आइए जरा पारे पे चलते हैं। पिछले पारे से इसका रब जुड़ेगा, और वो कैसे? पारा नंबर 10 के अंदर हमने कुछ बातें मुनाफिकीन की देखी, कुछ मोमिनीन की देखी। जात में ना जाने वाले हीले बहाने बना रहे थे। अब यहाँ आगे मुनाफिकीन के लिए 3 अहकाम आ रहे हैं। जो जिहाद में नहीं गए और इस पर झूठे उजर पेश कर रहे हैं, तो आयत 94 से 96 में मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने 3 ऑप्शंस प्यारे नबी को दी। एक क्या थी कि आप इनसे कह दीजिए कि बेकार और झूठे उजर पेश ना करें, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारे दिलों की क्या सारी चीज़ों की खबर है और तुम झूठे हो। दूसरी नसीहत नबी सल्लम को की गई कि आप इनसे एराज कीजिए, ना ही इन पर मलामत करें और ना ही इनसे ताल्लुकात रखें, यानी बस लिए दिए रहिए। बहुत ज़्यादा इनको, जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि बेतकल्लुफ ना कीजिए और इनको अहमियत देना छोड़ दें। और तीसरी बात क्या कि मुनाफिकीन कस्में खा खा कर आपको राज़ी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने इनसे राज़ी नहीं होना। ये बहुत अहम नुक्ता है। आज इस पूरे पारे के थीम में आपको एटीट्यूड दिखेगा निफाक वालों का। कैसे लोग अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ बनते हैं, फिर सामने आकर मोहब्बतों के इजहार भी करते हैं, लेकिन अंदर से जड़ें काटते हैं। और इसी तरह से कुछ लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी कौस से मोहब्बत नहीं करते। कुछ लोग तकाबुल में रहते हैं, कुछ लोग बस दफ़ा आपको जज कर रहे होते हैं कि ज़रा देखते हैं ये क्या होता है। तो मोमिन को अल्लाह से मदद मांगकर हर बंदे के साथ वैसा मामला करने की कोशिश करनी चाहिए जो हिकमत का तकाजा हो, और उसको उतना वक्त दीजिए जितना वो डिज़र्व करता हो। किसी को इतनी अहमियत दीजिए जितनी अहमियत वो बर्दाश्त कर ले, यानी लोगों से उनके कैलिपर के मुताबिक मिलिए। फिर इसके बाद ये पारा इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें 7 यानी 7 मुखलसीन मोमिनीन की तौबा की कबूलियत की बात है। पीछे मुनाफिकीन की बात थी, फिर मोमिनीन मुखलसीन की थी जो गज़वे तबुक में शरीक ना हो सके, वो टोटल 10 थे। इनमें से 7 लोगों का जिक्र आयत नंबर 102 में आएगा। वाखरूना तरफू, इनको मोतरफीन भी कहते हैं। खलत अमलन सालेहन वाखर सईया, गलती हुई, नदामत भी थी। अल्लाह के नबी के आने से पहले इन्होंने अपने आप को मस्जिद नबी के सतूनों से बांध लिया, और ये कह रहे थे कि जब तक अल्लाह के नबी खुद हमें माफ़ करके नहीं खोलेंगे, हम उस वक्त तक यहीं बंधे रहेंगे। खैर, फिर इनकी तौबा कबूल हुई और अल्लाह के नबी ने इनको खोल दिया। इसके बाद 3 का तذکرہ आगे आएगा, लेकिन आयत 107 में मस्जिद दरार की बात है। मुनाफिकीन की एक ऐसी खतरनाक साजिश कि मस्जिद के नाम पर एक ऐसी इमारत थी कि जिसके मकसद में एक बड़ा मकसद एक महाज बनाना था। 3-4 चीज़ें अल्लाह ने आयत 107 में बताई, जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम उसको देखेंगे। अल्लाह के नबी अपनी सादगी की वजह से उनकी इस ख्वाहिश पर कि यहाँ आप एक नमाज पढ़ा दें ताकि हमारे लिए ये जायज़ भी हो जाए, लोग भी कहते हैं अच्छा अल्लाह के नबी ने इसको गुशन किया है, अच्छा अल्लाह के नबी ने सर्टिफाई किया, अच्छा अल्लाह के नबी भी इधर आते हैं तो ठीक ही होगा, अच्छा अल्लाह के नबी इनको सुनते हैं तो ये ठीक होंगे, अल्लाह के नबी इनका जिक्र करते हैं। कुछ इसी किस्म की सिचुएशन थी। खैर, आपने कहा कि तबूक से वापसी पर मैं आ जाऊँगा और नमाज पढ़ लूँगा, लेकिन अल्लाह ने वापसी पर ही आयतें नाजिल करके उस मस्जिद को मस्जिद दरार करार दिया। फिर इस बारे में मस्जिद कुबा और अहले कुबा का भी तस्करा आयत 108 में, कि कैसे वो मस्जिद जो तकवा की बुनियाद पे कायम होती है वो ही बाकी रहती है, और जो इरसाद और देखा देखी और मुकाबलेबाजी और कुफर के लिए इमारतें या कोशिशें या प्रोग्राम्स बनते हैं वो कैसे तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। फिर इसमें तहारत और बातनी पाकिजगी का भी तस्करा। फिर इसी बारे में आपको वो खूबसूरत आयत मिलेगी जो अल्लाह और मोमिन बंदे के बीच का एक अहद है, बैत अकबा की तरफ भी इशारा है 111 में, यानी अल्लाह ने मोमिनों की जानें और उनके माल खरीद लिए। फिर इसके बाद आयत 118 में वो 3 मोमिनीन मुखलसीन की तौबा का तज़किरा है कि जिनसे बाइकॉट किया गया था। यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि पूरे पारे को नटशेल में लें, और आयतों के साथ तो पहले ही बहुत कुछ हो रहा होता है, तो आपका एक अच्छा सा नोट बन जाएगा पूरे पारे का। मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया और काब बिन मालिक, ये 3 गज़वे तबूक से पीछे रह गए थे, लेकिन इन्होंने साफ साफ अल्लाह के नबी को जाके अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए बता दिया था कि उज़र तो कोई नहीं था, बस सुस्ती थी। चूंकि इन्होंने अब बात सीधी की तो अल्लाह ने इनको जरिया बनाया बाद वालों के लिए कि अब ज़रा ऐसी भी एक मिसाल कायम कर दी जाए कि सोशल बाइकॉट, माशर्ती बाइकॉट हुआ, यहाँ तक कि बीवियों से भी अलग रहने का हुक्म दिया गया, और बिलाखिर 50 दिन के बाद फिर इनकी तौबा कबूल हो गई। और ये बहुत बड़ा ऑनर था इनके लिए, सूरत का नाम भी तौबा और कबूलियत भी है। फिर आयत 119 में मुत्तकी बनने का नुस्खा दिया गया, और वो क्या, सच्चे लोगों के साथ हो। अपनी सोहबत ठीक कर लीजिए, आपके अंदर खुद बहुत तकवा का बीज डलता जाएगा, और एक दिन आएगा कि आपकी खलवत और आपकी जलवत पाक हो जाएगी। आप फोन की स्क्रीन से भी गलत चीज नहीं देखेंगे, चाहे आप घर में अकेले हों, और ना आप किसी महफिल में बैठकर किसी को ताका छाकी करेंगे या किसी की तरफ नजर डालेंगे। अल्लाह हमारे मर्दों की नजरें भी पाक कर दे और औरतों की भी। और आखिर में फिर सूरत तौबा के वो खूबसूरत आयते जो आपके मेरे इस थीम सिराजम मुनीरा के साथ, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, और वो क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहसियत शफीक और मेहरबान नबी के, रऊफ और रहीम। अल्लाह ने इस सूरत के आखिर में नबी की ये खूबी बयान की कि उलमा में से कुछ सलफ सालिन कहते थे कि अल्लाह ने अपनी इतनी सिफात में से सिर्फ दो सिफात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, इन आयतों में 128, हरीस अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ और रहीम। और आखिर में फिर तसल्ली है खातमुल अंबिया को कि फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, और दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि आपको मुझे गम दूर करने का अमल हस्बी अल्लाह की सूरत में दे दिया, सुबह शाम 7 दफ़ा पढ़ना। तो सूरत तौबा का आप मिजाज देख रहे हैं, कितनी कॉम्पैक्ट सूरत है। इसके बाद फिर दोबारा मक्की सूरतों का सिलसिला भी शुरू होगा, और साथ ही लिख लीजिए कि अब यहाँ से अंबिया कराम के नामों पे सूरतें शुरू होंगी, जिसमें पहली सूरत यूनस है, मक्की है। इसका बुनियादी थीम कुरान है, ईमान बिल कुरान, कुरान पाक पे इतराज़, तौहीद, रिसालत और आखिरत के साथ साथ इसमें आपको पिछली कौमों के किस्से भी मिलेंगे, तरगीब और तरहीब भी है, और ख़ास तौर में इस सूरत में कौम यूनस की तौबा का तस्करा है, इसीलिए इस सूरत को सूरत यूनस कहते हैं। मुशरिकीन ने मक्का के जो शुबहात थे उनके जवाब, फिर तौहीद और कुदरत बारी ताला पर दलाइल हैं। फिर इसमें आपको बहुत ऊट पटांग किस्म के मुतालबे भी मिलेंगे कि ईति भी कुरान इन गैरी हाजा उबद्दिल हो, या तो इस कुरान में कुछ चेंजेस कीजिए या फिर कोई नया कुरान ले आइए। तो अल्लाह ताला ने नबी को इनके साथ डील करना सिखाया। फिर आखिर में इस बारे में किस्सा नूह भी आएगा, हजरत मूसा और फिरौन का किस्सा, कौम यूनस का किस्सा, और आखिर में फिर नबी को बता दिया जाएगा कुल या अय्युहन्नास कद जाअकुम अल हक्कु मिन रब्बिकुम, यानी आपका काम सिर्फ दावत देना है, बाकी काम अल्लाह ताला के जिम्मे है। तो अब यहाँ देख लीजिए कि एक पारे के अंदर से जब आपने इतना कुछ लेना हो, तो अगर इसमें हमारा आधा घंटा भी लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई नुकसान का सौदा है। लोग कई दफ़ा कहते हैं हो भी पारा 2 घंटे का, फिर ये भी हो वो भी हो, तो याद रखिए कि मोमिन गिने नहीं तो ले जाते हैं। आप ये देखा करें कि आपको इस वक्त में कितना कुछ मिल रहा है, और अल्लाह ताला आपको मुझे हक बात की तौफीक अता फरमाए। आइए अब आयतों के साथ चलते हैं, सूरत तौबा की आयत नंबर 94 से 129 सूरत के एंड तक ये सूरत इस बारे में आएगी, और फिर आगे सूरत यूनुस और कुछ हिस्सा फ्यू आयात सूरत हूद की भी पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم। यहाँ से गज़वे तबूक का वो सिलसिला जो वापसी के सफ़र के बाद लोगों का आपको मिलने आना और अपने अपने ना जाने की वजूहात बयान करना है। एक एक को सुनते पढ़ते वक्त हम अपना मुहासबा करेंगे कि जब हमें नेकी का कोई मौका मिल जाए तो हम उस वक़्त क्या उज़र बहाने करते हैं या फिर हम उस पे शर्मसार होते हैं। ये लोग तुम्हारे सामने उजर पेश करेंगे, जब तुम इनके पास वापस जाओगे आप कह दीजिए ये उजर मत पेश करो, हम कभी तुमको सच्चा न समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है, और आइंदा भी अल्लाह और इसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। इससे पता चलता कोई मौका आखिरी नहीं होता, और भी मौके आएंगे जिससे आपकी परख होगी, फिर इसी की तरफ लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सब का जानने वाला है, फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे जब तुम इनके पास पलट जाओगे। यहाँ से बिल्कुल दूसरे पारे का अंदाज नहीं लग रहा, सयकुलु सुफहाउ मिनन्नास, तो पता चलता है कि अल्लाह ताला को पहले से मालूम होता है कि आने वाले दौर में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इसीलिए फरमाया, जब तुम इनके पास जाओगे ताकि तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो, बस तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो, वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और इनका ठिकाना दोजख है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। ये इसलिए कसमें खाएंगे कि तुम इनसे राजी हो जाओ, और अगर तुम इनसे राजी भी हो जाओ तो अल्लाह ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। हाईलाइट कीजिए, फ़इन्नल्लाहलायर्दानिल्कौमिल्फासिकीन। आगे कुछ अराब की बात है। अल अराब वशद्दु कुफ्रं व निफाका। देहाती लोग कुफर और निफाक में बहुत ही सख्त हैं, और इनको ऐसा होना भी चाहिए। इनको इन अहकाम का इल्म ना हो जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। जो जानवरों में रहेगा ना, वो सख्त मिजाज हो जाएगा। जो रकीकुल कल्ब लोगों में रहेगा, उसका दिल नरम हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि जिनको अल्लाह ने नेमतें कम दी, फिर उनके साथ मामला भी नरमी का होगा। लेकिन बहरहाल देहाती लोगों को दीन के मामलात में अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहिए। फमिनल आरा भी मैं यतखिज़ु मा युन्फिकु मगरमा। और इन देहातियों में से बाज़ ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं इसको जुर्माना समझते हैं, और तो मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजिर रहते हैं। बुरा वक्त इन पर ही आन पड़ने वाला है। अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। वमिन अल अराबी मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब यहाँ देहातियों की दूसरी किस्म, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाली। और बस अहले देहात ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का ज़रिया बनाते हैं। नोट कीजिएगा, इस बारे में आपको अल्लाह के नबी की दुआओं का भी बहुत तذکرہ होगा। तो अल्लाह के नबी बहसियत दुआएं देने लेने वाले, अल्लाह आपको मुझे भी ऐसा ही कर दे। और रसूलुल्लाह की दुआ का जरिया बनाते हैं। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मूजिबे कुर्बत है। इनको अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा, क्योंकि इन्ना अल्लाह गफूर रहीम। अल्लाह बड़ी मगफरत वाला और रहमत वाला है। अब आगे वो आयत है जो आपका मेरा लाहे अमल होनी चाहिए। कोई नेकी का मौका आ जाए, सबसे आगे। किसी बुराई से रुकना है, सबसे पहले। किसी हिजरत का मौका आए तो लब्बैक, अबू बकर की तरह। कभी जिहाद का मौका आ जाए तो लब्बैक। और ऐसे ही लोग टॉपर्स में से होते हैं। वस्साबिकून अलव्वलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार। और जो मुहाजरीन और अंसार साबिक और मुकद्दम है, और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरों हैं यानी इनकी पैरवी कर रहे हैं, रदी अल्लाह अन्हु व रदु अन, अल्लाह इनसे राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुए। और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। हाईलाइट कर लीजिए, ये वाहिद मुकाम है कुरान का कि जहाँ मिन के लफ्ज के बगैर लफ्ज आ रहा है, इसलिए तहती की जगह तहतहा आ रहा है। नोट कीजिएगा, जन्नत तजरी तहतहल अनहार। हुफाज को यहाँ गलती लग जाती है, क्योंकि आमतौर पे मिन आता है, यहाँ मिन नहीं है। तो क्या फरमाया कि ऐसे बाग मुहैया किए जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और जालिकल फौजुल अजीम, ये बड़ी कामयाबी है। असल कोशिश कीजिए इसकी। देखिए, जो फर्स्ट सेकंड आने की कोशिश करते हैं ना, वही टॉप करते हैं। फर्स्ट नहीं आएंगे सेकंड, सेकंड नहीं आएंगे थर्ड। लेकिन जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर 33% पे कामयाब हो, कभी आपने मैंने उनको फर्स्ट आता नहीं देखा। तो ज़िंदगी का असूल ये बना लीजिए कि इस थोड़ी सी ज़िंदगी से बड़े बड़े काम, अच्छे अच्छे काम करके जाइए, ताकि आपको भी ये सर्टिफिकेट मिले। ये करेक्टर सर्टिफिकेट अल्लाह की तरफ से मिल रहा है उनको, जिन्होंने अपने प्यारे नबी का साथ दिया, दुख सुख में काम आए। हिजरत का मौका है तो हिजरत की, जिहाद का मौका है तो जिहाद किया, माल देना था तो दिया, लेना पड़ा तो लिया भी। तो ये सब कुछ करके अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी को एक और खबर देते हैं। वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराबी मुनाफिकून। और कुछ तुम्हारे गिर्दो पेश वालों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं। आप इनको नहीं जानते, हम इनको जानते हैं। हम इनको दोहरी सजा देंगे, ये बहुत बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह के नबी को गैब नहीं पता था। लोग अपनी बातों, टोन, अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से खुल तो जाते हैं। तारीफ और चापलूसी का फ़र्क एक अक्लमंद बंदा जान लेता है। सिर्फ बातों के साथ खुश करने वाले और काम कर कर के खुश करने वालों को भी जानता है, लेकिन मुरव्वत की वजह से बोलता नहीं है। अल्लाह ने नबी को बता दिया उनके निफाक का। क्या जहाँ पर मैं किसी को मुनाफिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्यों? कि वही का सिलसिला खत्म है। जुबानी नबुवत से किसी को मुनाफिक का टाइटल मिल गया तो उसमें शक भी ना कीजिए कि नहीं शायद अब्दुल्ला बिन उबई ठीक ही होगा, नहीं शायद अबू जहल बेचारा अच्छा ही हो, गलती ना लगी हो, नहीं। फमायंते को अनिल खवाइन हुआ इल्ला बख्श यूखा। इसलिए अल्लाह के नबी के बाद अब मेरा आपका अखलाक क्या है, किसी को मुनाफिक ना कहें। हाँ, अगर किसी एक को मुनाफिक समझने की ज़रूरत है तो अपने आप को देखिए। 80 के करीब सहाबा और सहाबियात अपने ऊपर निफाक का शुबा रखते थे, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। अगर आप वो नाम सुने तो घबरा जाएं। आज मैं और आप कैसे अपने आप को ईजी समझें? तो याद रखिए, ऐसे मुनाफिक जो निफाक पे अड़े हों, मरद वाला निफाक, मरद का लफ्ज़ कहते हैं होशियार चालाक, यानी हाथ की सफाई दिखाते हैं, खबर ही नहीं होती और पता नहीं चलता कि ये झूठे हैं, लेकिन वो झूठ बोल जाते हैं। नहनु नालमुहुम, हम इनको जानते हैं, लिहाजा हम इनको अब दोहरी सजा देंगे, वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। और अब एक और किस्म, वाखरूना तरफ बिजुनूबिहिम खलत अमलन सालेहन, और कुछ और लोग हैं जो अपनी खता की इकरारी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ भले और कुछ बुरे। ये हैं वो 7 किस्म के लोग जिन्होंने अपने आप को एक सतून के साथ बांध लिए। और आज से जनरली ये आयत मेरे आपके लिए। एक साबी ने जब कुरान में सुना पढ़ा कि फी जिक्रकुम, तो ढूंढने लगा कि मैं किधर हूँ कुरान में, क्योंकि कुरान कह रहा है 17वें पारे में आएगा आगे कि इस कुरान में तुम्हारा जिक्र है। तो साबिकून वाली आयतें देखी, का मैं ऐसा तो नहीं। मुनाफिकीन कुफार की आयतें पढ़ी, का मैं ऐसा भी नहीं। जब इस आयत पे ना खलत अमलन सालेहन खरा सैया, तो कहने लगे हाँ ये मैं हूँ। और आज देखा जाए तो यही उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत है। नमाजें भी पढ़ते हैं, फोहश से भी नहीं रुक पाते, हज और उमरे का जो शौक है जाके तो देखिए। कल रात ऐसे लग रहा था जैसे इंसानों का सैलाब आया हुआ है, छत पे इधर से उधर। और मैं कह रही थी चलो अभी ये वक्त है ना कि लोग हज उमरा कर रहे हैं, ये अलग बात है कि अब उसमें भी रूहानियत कम होती जाए और हम वहाँ बैठकर भी सेल्फ कॉन्शियस ज्यादा है अल्लाह कॉन्शियस होने से। लेकिन ये जो घुले मिले अमल होते हैं ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे, ये बीच का फेज है। इसके बाद और खतरा हो जाता है बंदे को कि किसी वक्त जरा से फिसले तो नीचे चलेंगे ये, यानी 33% से 50% वाले लोग हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को भी क्या कहते हैं, वाखर सैयद असल्लातूबा अलैहिम, अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा कबूल फरमाए। बिला शुबा अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला, बड़ी रहमत वाला है, यानी अल्लाह ताला पत्ता नहीं काटता। ऐसे लोगों को भी रहमत की उम्मीद दिलाई जा रही है कि अभी जिंदगी है, हो सकते हैं आने वाले वक्त में अच्छे हो जाएं। अब क्या किया जाए? ऐसे लोग जिनसे गुनाह भी हो रहे हैं, नेकियां भी हो रहे हैं, आपके मेरे अमल की भी बात है, खुश मिन अमवालिहिम सदका, आप इनके मालों में से सदका लीजिए, जिनके जरिए से आप इनको पाक साफ कर दें, और इनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मूजिबे इत्मीनान है, और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। लिखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत दुआएं देने वाले, दुआएं लेने वाले, ये एक तो मोमिन की निशानी होती है। और दूसरी बात याद रखिए कि आज आपके लिए मेरे लिए इसमें बहुत सबक है। वो कौन सा दिन है, वो कौन सी रात है जब लोग आपको ये ना कहें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। लिखिए, जम है आपका, दुआएं कही नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, दुआएं कमाई जाती हैं। ऐसे काम कीजिए अगले के दिल से दुआ निकले। और ये दुआएं लेना देना, और ख़ास तौर पे रमज़ान में और कुरान के दौरान, क्या वक्त है, कैसे आप दुआएं लेते देते हैं? यानी मैं अपने इर्द गिर्द जब लोगों को देखती हूँ, और यकीन करें मेरा वक्त जितना कुरान पढ़ाने में पढ़ने में गुजरता है ना, उसके बाद के वक्त में से मेरे वक्त का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ दुआएं देने में जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इस वक्त पढ़ाने के दौरान भी मेरे दिल से दुआएं निकल रही होती हैं। देखिए, ये जो दुआ के लिए लफ्ज़ हैं, साहब के लाख के और गाना और गुनगुनाना, ये कोई बात नहीं, आपका दिल तड़प रहा होता है। एक एक लफ्ज़ पे दुआएं देती हूँ, जो लोग साथ काम करते हैं, जो अंसारुल्लाह है, जो रीडिंग टीम है, जो एडिटिंग टीम है, जो काम कर रहे हैं, जो चौकीदार बन के एडमिन्स बनते हैं, जो जिम्मेदारियां अदा करते हैं। इस वक्त देखिए, अगर हजारों लोगों तक ये पैगाम पहुंच रहा है, तो कोई है ना जो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कोई है ना जिसने लिखा, जिसने सही किया, जिसने ये फिगर्स बनवाए बनाए, जिम्मेदारान है पूरी पूरी अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ताला ने ऐसी टीम्स दी हुई हैं कि जो ये काम करती हैं। तो यहाँ मैं तहदीसे नेमत पे नूरुल कुरान प्लेटफॉर्म पे आने वाले सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि सबसे बड़े वॉलंटियर ये हैं जो अपने आप को पेश करते हैं और इनकी खिदमत की जाती है, तालिब इल्मों को जो हकीकत में तलब के लिए कुरान सुनते, चाहे वो स्टूडेंट बन के कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, या वो एज ए लिसनर सुनते हैं, या वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हमारे सुबह सलाम कोर्स में है, किसी तस्किया ग्रुप में है, यानी हर एक, मैं नाम लेके कल एक के दूसरे का भूल ना जाऊं, सब के लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह आपके दिलों को कुरान के नूर से भर दे और इस सिलसिले को क्यामत तक कायम रखे, क्योंकि टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क। पिछले पारे में हमने मुनाफिकीन की भी सिफात पढ़ी और मोमिनीन की भी। उलमा कहते हैं कि ना अच्छे काम टीम वर्क के बगैर होते हैं और ना बुरे काम। आज दुनिया में कैसे लोग जुड़ के बैठे हुए गुनाह फैलाने, न्यूडिटी फैलाने, ये कोई काम एक बंदे से थोड़ी होता है, पूरी प्लॉटिंग होती है, पूरे प्लान्स बनते हैं, पूरे पूरे गैंग्स हैं पीछे जो कि ये गंदी और न्यूड फिल्में बनाते हैं। तो क्या आप और मैं दीन के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या हम दीन के नाम पर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते? तो दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। अब छोटे छोटे ग्रोहों में बट के अपनी अपनी लाठियां लेकर चल पड़ना और अपनी अपनी छोटी छोटी मस्जिदें बनाने का वक्त गया। ट्रायल एंड एरर की उम्र भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। जिसको भी आप अच्छा समझते हैं, आप अपनी ज़ुबान में, जैसे मैं उर्दू में बात कर रही हूँ ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में बात करते हैं, आप देखिए कि आपके जानने वाले ग्रुप्स में, प्लेटफॉर्म्स में, इंस्टीट्यूट्स में, टीचर्स में से कौन नंबर एक कुरान सुन्नत पे, इस पे नो कॉम्प्रोमाइज। दूसरी बात, अपनी निस्बत किसी एक गिरोह के पास करने की बजाय डायरेक्ट कॉल अल्लाह व कॉल रसूल पे। तीसरी बात है कि जो वो बात करते हैं वो आपको समझ आती है, आपका और उनका माइंडसेट मिलता है, लेवल उनका आपका सेम है, बस उसको पकड़ लीजिए। खप जाएं, तप जाएं, ले भी लें और कल दे भी दें, तरले मिन्नतें कर कर अल्लाह से कह दें कि अल्लाह मुझे उस भेड़ की तरह ना करना जो गिरोह से कट गई, क्योंकि बहुत सारे शैतान दिल में वसवसे डालता है। लोग कहते हैं हम अपने पेस पे पढ़ेंगे, हमें कोर्स ज्वाइन नहीं करना, नहीं फिर ग्रुपिंग होती है, फिर जिम्मेदारियां, फिर आना पड़ता है, रोल कॉल लगती और टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर आप कभी कुछ बनेंगे भी नहीं। ये भी याद रखें, आज तक आपने कोई ऐसा डॉक्टर देखा जो मेडिकल कॉलेज में ना दाखिल हुआ हो? घर बैठ के कोई बैठ के किताबें पढ़ के डॉक्टर बनता है? ये है आज का बड़ा मसला। घर बैठ के जो दीन सीख रहे, घर बैठने से मेरा समझ गए, इसका देखो उसका देखो, कुछ कोई तरतीब ही नहीं है। कई लोग कोर्स करते करते एकदम छोड़कर तजवीद पे चले जाते, कोई ग्रामर सीखने चला जाता, कोई फिकी किसी मसले में चला जाता और वापस शायद ही कोई आएगा। क्यों? तरतीब नहीं, अकायद से ही कीजिए। पहले आपको अकीदा सीखना, और अकीदा से ही होता है तो कुरान से होता है। आप माशाल्लाह 10 पारे पढ़ चुके, आपको इसमें कोई नमाज के तरीके की बहसें दिखी हैं? कोई तलाक के तरीके में बहसें, को मबासे दिखे हैं? कुरान का मौजू अकीदा है, अल्लाह रसूल और आखरत, इन तीन चीज़ों को मुकाम दे दें, जिंदगी रहेगी तो आगे जाएंगे, हदीस पढ़ेंगे, हदीस के साथ फिर फिक पढ़ेंगे, फिर आप आइमा कराम के भी मसाइल देखेंगे। तो बहरहाल बात तो लंबी हुई, लेकिन शायद के किसी को इससे फ़ायदा हो जाए। तो दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। और दिन रात वो लोग जो किसी भी तरह की खिदमत करते हैं, आप देखिए हमारी तो पूरी ज़िंदगी मुसाफिरों वाली ज़िंदगी है। बंदा जब मुसाफिर होता है ना, तो उसके पास वो सारी सहूलतें नहीं होती जो आपके अपने घरों में रहते हुए अपनी होती हैं। तो उस वक्त बावजूद पूरी कोशिश के कि कोई किसी के ऊपर कोई बोझ ना बने, फिर भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को पेश करते हैं। तो मैं तो उनको यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको ये मुबारक करे कि आप इस दीन से फ़ायदा लीजिए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं वाकई अपने दिल में सोच भी रही होती हूँ कई जगह कि ये जो सारी इनकी खिदमतें हैं, क्या हम इसका हक भी अदा कर रहे हैं? कल क़यामत के दिन जाएं तो पता चले हमारे नाम पे इतने बिल पड़े हुए हैं कि लोगों ने आपकी ये खिदमत की, लोगों ने आप पे ये वक्त लगाया, ये आपको सर्विस दी, और आप क्या करके आए हैं? तो ये चीज़ फिर मेरे दिल में और गुदास लाती है, फिर मेरी तड़प पड़ जाती है कि अल्लाह फिर मैंने अब इसका हक भी ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन किसी के ज़ेरे बार ना रहूँ, और इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ अल्लाह के रास्ते में लें और दें, और इसके बाद अल्लाह की नज़रों में हमारे दिलों में पाकी हो। अगली आयत पढ़कर तो मैं अपने ऊपर ही कहूँगी कि अल्लाह हम सबको अच्छी सी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए आयत 104, अलम यालम अन अल्लाह हुवा यकबलुत तौबा, क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदकात को कबूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह ताला ही तौबा कबूल करने में कामिल और बहुत रहीम है। तो अपने गुनाहों के पटारे दूसरों के सामने मत खोलिए, उसके सामने झुकिए। आप खूबसूरत दिन रातें शुरू हो गए हैं, रमज़ान की घड़ियां आपके सर पे हैं, आपने रोज़े रख लिए। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को लेते हुए अपनी इसलाह करें, अपने गुनाहों की तौबा, अपना रमज़ान का थीम बनाइए कि मैंने एक एक अमल अपना चेक करके गलतियों की तौबा करनी है और नेकियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे मज़ीद तौफीक दे, और साथ ही साथ क्या करना है, वक़ुले मलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहू, कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और इसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे, और ज़रूर तुमको इसी के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीज़ों का जानने वाला है, बस वो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा, और कुछ और लोग हैं जिनका मामला अल्लाह के हुक्म आने तक मुलतवी है, इनको सजा देगा या इनकी तौबा कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। ये वही 10 लोग हैं जो तारुफ में बता चुकी हूँ कि जिन्होंने थोड़ी बहुत देर की, किसी की अल्लाह ने फौरन कबूल की, किसी की 50 दिन पे ले गया, और इन सब को बिलाखिर माफ़ कर दिया गया। लिखिए अमल की बात, जब बंदा तौबा कर लेता है ना तो अल्लाह उसको माफ़ कर ही देता है, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा या नहीं फरमाता वो कौन है, जिनका तज़किरा बागे 107 से ऑनवर्ड, वल्लज़ी नत्तखज़ु मस्जिदन दिरारा, और बस ऐसे हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई के ज़रर पहुंचाएं और कुफर की बातें करें और ईमानदारों में तफरीक डालें और इस शख्स के क्याम का सामान करें जो इससे पहले अल्लाह रसूल का मुखालिफ, और कस्में खाएंगे कि सिवाय भलाई के और हमारी कुछ नीयत नहीं, अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। देखिए इरादे क्या थे, नीयतें क्या थीं, और कस्में क्या हैं कि हम तो बहुत ही सच्चे हैं और ये है और वो है, अल्लाह ने कह दिया इन्नहुम लकाज़िबून। लिहाजा अल्लाह के नबी को क्या हुक्म दिया, ला तकुम फीही अबदा, आप इसमें कभी खड़े ना हो, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हो, इसमें ऐसे आदमी हैं वो पाक होने को पसंद करते हैं, अहले कुबा की तरफ इशारा, और अल्लाह ताला खूब पाक होने वालों को पसंद करता है, फिर आया ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी हो। अल्लाह अकबर कबीरा, इससे मुराद सारे ही वो लोग हैं क्यामत तक आने वाले के जो भी नेकी करते हैं तकवा की बुनियाद पे करते हैं और अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। इसके बरक्स मन अस्सस बुनयानहु शफा जुर्फ इनहार, या वो शख्स के जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर जो के गिरने ही को हो रखी हो, फिर वो इसको लेकर आतिशे दोजख में गिर पड़े, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को समझ ही नहीं देता। इसे पता चलता है कि निफाक बंदे की समझ खत्म कर देता है, उसको अपना नुकसान भी नहीं दिख रहा होता। ला यज़ालु बुनयानुहुमुल्लज़ी बनौ रीबतन फी कुलूबिहिम, इनकी की इमारत जो इन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में शक की बुनियाद पर कांटा बनकर खटकती रहेगी, हाँ मगर इनके दिल ही अगर पाश पाश हो जाएं तो खैर। और अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। इससे पता चलता है कि कोई नेकी करके सुकून मिले ना तो ये हक में होने की दलील है। आप सब भी जरा अपने दिलों को चेक करें, आप ये जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, 10 पारे हो गए, और जो करवा रहे हैं, जो माशाल्लाह 20-25 साल से इस मिशन में साथी हैं, आपके दिल में सुकून है? आपको कोई कुलक तो नहीं आता? आपके दिल में कोई इस्तराब तो नहीं इन तालीमात के बारे में जो आपको मिल रही हैं? कोई किसी को कोई शक है? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये हक की एक पहचान, अंदर का गहरा सुकून इस बात की दलील बन जाता है कि अल्लाह ने दुनिया में भी जो दिया वो भी कबूल करेगा और आगे भी देगा, और ये सुकून जन्नत की नेमत है, और दुनिया में ये इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में भाग दौड़ करने वालों को तोहफे में मिल जाता है। अल्लाह आपको मुझे इखलास दे दे। आगे है वो आयत जिस पे अगर मैं और आप अमल कर जाएं तो अल्लाह के साथ आपका मेरा सौदा पक्का, और वो क्या है, इन्नल्लाहश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बियन्न लहुमुल जन्ना। अपने ऊपर लेकर इस डील को सोचिएगा, और है तो बैते अकबा की तरफ, लेकिन क्यामत तक के मोमिनीन के लिए ये आयत एक बहुत ही प्यारा मोटिवेशन रखती है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों से इनकी जानों को और इनके मालों को इस बात की इवज खरीद लिया है कि इनको जन्नत मिलेगी। वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं, इस पर सच्चा वादा किया गया है तौरात में और इंजील में और कुरान में, और अल्लाह से ज्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला है। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, कितना प्यारा अंदाज है। लिहाजा फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, बस खुशियां मनाओ तुम लोग इस बै पर जिसका तुमने मामला ठहराया, और वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने आपको मुझको खरीद लिया। मोमिन बिका हुआ होता है, उसके ऊपर सोल्ड का साइन होता है, आई एम नॉट फॉर सेल का साइन लगा होता है। अब तसव्वुर मिलाइए किसी को अपना फोन बेचना है, अब बेचने निकला, घर से कोई कहता है मुझे दे दो इतने का, मैं इतने का ले लूंगा, बड़ी थोड़ी सी कीमत लगाई क्योंकि उसको पता कि आपने तो बेचना है, चलो मजबूरी से फायदा उठाते हैं। आप कहते हैं अच्छा जरा मैं चेक तो करूं, बाहर गए एक दुकान वाले के पास, ये फोन बेचना है। दुकानदार तो दुकानदार है, उसने अपना नफा रख कर थोड़ी सी ज्यादा कीमत लगा के आपको दी। इतने में वहां खड़ी एक और सिस्टर जो बिल्कुल वैसा ही फोन खरीदने वाली थी, आपको चुपके से बाहर बुलाती है और कहती है इसको ना दे मुझे दे दे, ये जो कह रहा है मैं उससे 150 ऊपर दे दूंगी। अकलमंदी क्या है, घर में ही बेच दें दुकानदार को, नहीं आप ज्यादा कीमत मिलेगी उसको दे दीजिए, बस इसको लीजिए। आप और मैं जब इस दुनिया के बाजार में निकलते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा नफ्स खरीदता है, हम अपने नफ्स के पुजारी, जो चाहो करो, सोने को दिल सो जाओ, खाने को दिल चाहे खा लो, पीने को दिल, बस बेकार वर्थलेस लाइफ। और ये अक्सर क्रिमिनल लोग होते हैं, नशेई, जो अपनी जिंदगी को अपने हाथों को में बेचते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा लाइफस्टाइल, मेरे से कोई बात ना करे, और बिलाखिर ये नाकाम होते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो लोगों के हाथों बिकते हैं, यानी फर्स्ट वन सेल्फ प्लीजर्स, सेकेंड वन पीपल प्लीजर, लेकिन थर्ड वन इज अल्लाह प्लीजर। ये आयत बताती है कि मोमिन अल्लाह प्लीजर होता है, अपने हर काम से पहले देखता है कि मेरे इस काम से अल्लाह कितना खुश होगा। तो आइए तदब्बुर के साथ साथ अमल के कुछ नुक्ते, नेकी के काम में पहल कीजिए, मुमकिन है अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ने वालों में लिख ले और आप साबिकून अव्वलून में बन जाएं। खामोशी से कोई ऐसा नेक काम करें जिसे अल्लाह के सिवा कोई ना जान सके, ताकि आपके अंदर से निफाक का कीड़ा निकल जाए। अल्लाह की राह में अपना माल, अपनी सलाहियतें, अपना वक्त लगाएं ताकि ईमान मजबूत हो। तो कह दीजिए कि अल्लाह मैं भी तेरी और मेरा सब कुछ तेरा, आई ओव नथिंग आई ओन नथिंग। लोग तो मरने पे कहेंगे इन्ना लिल्ला, मैं अपनी जिंदगी में कहती इन्नी लिल्ला, मेरी हर चीज़ तेरी, मेरी स्किल्स तेरी, मेरी खूबियाँ, मेरा घर, मेरा जो भी तूने ही दिया, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, वो सब कुछ तेरा है। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के ऊपर नज़रें लगाएंगे उतना आपको खुशी होगी कि अल्लाह से ज़्यादा भला मेरा कदरदान भी कौन है, क्योंकि वो तो ज़रा नवाज़ है। वकान अल्लाह खुशाकिरन अलीमा। फिर कुरानी रहनुमाई के पॉइंट्स, अल्लाह सहाबा से राज़ी हुआ, अब जो सहाबा से राजी हुआ तो अल्लाह के करीब है। तो कभी सहाबा को बुरा भला ना कहिए, कभी उनमें से किसी एक के ऊपर दूसरे का तकाबुल ना कीजिए। फिर इंसान का छुपा हुआ इरादा इसे जाहरी आमाल पर उभारता है, यानी हम अपने आमाल की रोशनी में देखें कि हम अंदर से कैसे हैं। आपके आमाल की बुनियाद अल्लाह का तकवा, इसकी खुशनुदी हो और आमाल इसी के लिए खालिस हो, यही निजात का रास्ता है। गौर व फिक्र के चंद पॉइंट्स, हिजरत में पहल करना बहुत बड़ी नेकी और अजीम इताअत है, लेकिन यह है बहुत मुश्किल, नफ्स को कुचलना पड़ता है इसमें। नफ्स वो चाहता है जो सब कर रहे हैं, जो इजी है, हालांकि हिजरत और जिहाद, अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये सब कुछ पहले नफ्स पे पांव रखिए फिर इधर जाइए। किसी ने पूछा जन्नत कितनी दूर है, कहा 2 कदम। कहा कैसे? कहा पहला कदम नफ्स पे रख दो तो तुम्हारा दूसरा कदम जन्नत में होगा इंशाल्लाह। सदका खैरात इंसान को गुनाहों से पाक करता है और इसके जरिए तज़किया और तरबियत होती है। कसरत से सदका कीजिए और सदके की खूबसूरत किस्में देखिए, मुख्तलिफ अकसाम। आज के दौर में सदका और ख़ास तौर पर हरम में बैठे वाले के लिए सदका, अल्लाह अकबर कबीरा। लोग बेचारे सारा सारा दिन आके बैठे रहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं निकलते कि निकल गए तो अंदर नहीं आने देंगे या पैदल कैसे जाएं, सब भूखे होते हैं वहाँ। अगर अंदर ले जाने दें तो मैं तो कहती हूँ फ्रूट की पूरी बोरी ले जाओ और एक एक सेब सबको दे दो। थोड़ी सी चीज़ें ऐसी, कोई कैंडी है, चुपके से हल्की हल्की छोटी लाइट वेट चीज़ें अपने बैग में रख लिया करें जब शाम को जाते हैं, और किसी को एक कैंडी भी दे देंगे तो उस वक्त वो मशहूर होकर खजूरें ले जाएं। और यहाँ तो आप देखते ही हैं कि जो माशाल्लाह हरम में खाने बंटते हैं और इफ्तारियों और सहरियों में, शायद ही किसी को खुद से लेने की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन और भी बहुत से सदके, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा अपने फ़ोन से कॉल करा दें, सफ़र के दौरान आपको सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल कोई कराने दे दे, इतनी वो दुआएं आपकी ले जाता है कि शायद किसी और वक्त ना मिले क्योंकि उस वक्त आपके सिम नहीं होती। तो ये देख, इस्माइल दे दे, किसी को रास्ता नहीं पता उसकी मदद कर दे, कोई गलत तरफ जा रहा है उसको बता दे। कल रात मेरे साथ दो पाकिस्तानी खवातीन थी, बुजुर्ग थी, तो जब जनाजे की नमाज शुरू हुई तो शुरू हो गई, मैं पढ़ने लगी तो मैं देखो दोनों बैठी हुई है ना, तो मैंने कहा अम्मा जी तुसी भी पढ़ लो, अज असी किसी का पढ़ांगे तो कल साढ़ा भी कोई पढ़ेगा। कहती अच्छा है भी पढ़ी दे, फिर मेरे साथ खड़ी हो गई, फिर मेरी अपनी अलग के पीछे हो रही थी, लेकिन मैंने उनको थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, फिर बाद में मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने कहा कब तक है, करी पूरा महीना इतने हैं, मैं कहा फिर हर नमाज पढ़नी है, क्या पता अल्लाह ताला मेरा ये छोटा सा उनसे बात करना कबूल कर ले। तो लोगों को बताइए, छोटे छोटे कार्ड्स रखिए, QR कोड से लोगों को ग्रुप्स में डलवा दें, यदि सदके की बीसियों किस्में हैं जिसका अब इस वक्त मौका नहीं बन रहा, वरना यकीन करें दिल तो बहुत चाह रहा है कि आपको बहुत सारी नेकियां बताऊं, ताकि आप रमज़ान में बेहतरीन तरीके से इनसे फ़ायदा उठाएं। आपका कुछ भी नहीं लगता लेकिन अगले का बहुत कुछ बन जाता है। फिर इसी तरह अहले बिदात के गलत ख्याल को फैलाने वाली हर कोशिश, हर चीज़, हर इदारा, हर तहरीक मस्जिदे दरार है। लोगों को हक से दूर करना, शुबात पैदा करना और उनके अंदर उलझन पैदा करना, ये सारी मस्जिदे दरार की कैफियत हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। फिर गौर व फिक्र की बातों में, बाजमात नमाज का मकसद अल्लाह की इताअत की बुनियाद पर दिलों को जोड़ना है, इसीलिए सफ बंदी कराई जाती है। आप सिर्फ सफ़े ही लोगों की सही करवा दें तो ये भी एक इंशाल्लाह इल्म सिखाने वाली बहुत अच्छी बात होगी। नेकी की बरकत नेकी करने की जगह तक पहुंच जाती है और बुराई की बेबरकती भड़कर बुराई करने की जगह तक चली जाती है। इसको 3 दफ़ा लिखिएगा। आपको अपनी ज़िंदगी में जो बरकत महसूस होगी ना, वो आमतौर पे लोगों के पास नहीं होती। माल में बरकत, स्किल्स में बरकत और हर चीज़ में बरकत। अल्लाह का नाम ही बड़ा बाबरकत है, क्योंकि तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, सूरह फ़ुरक़ान के शुरू में अल्लाह ने बता दिया। तो जिसके साथ कुरान लग जाता है ना, उसकी ज़िंदगी बरकतों वाली होने लगती है। तकवा पर इमारत की बुनियाद से मुराद इसमें नीयत अच्छी रखना, अल्लाह की खुशनुदी चाहना और इसकी शरीयत का बोलबाला करना है। अल्लाह में ऐसा तकवा ता फरमाए।